আমাদের মুছার একটা ম আছে কি কোন একটা হৃদয়ের মধ্যে চিন্তন নাই? তাই এইরকম হয়তো বলছেন দুঃখ জ্বালাভিমগ্ন, আর একটা এর থেকেও বেশি বড় দুঃখ বৈষ্ণব সাধু সঙ্গ নাই। গুরু বৈষ্ণবের সেরকম আমরা সেবা করতে পারি না, সেবা নেই কর পাতে। আর তিসরা হতা হ্যাঁ যে উসে আর উপর হ্যাঁ উনকো কৃষ্ণ বিরহ কা দুঃখ। ইন সব মে সবসে বড়া দুঃখ কৌন হ্যাঁ কৃষ্ণ বিরহের জন্য দুঃখ। আমাদের তো হচ্ছেই না, আর যাহাদের আছে রূপ সনাতনের কিরকম হা হুতাশ করে, হে ললিতে তুমি কোথায়, হে বিশাখে তুমি কোথায়, হে রাধে তুমি কোথায়, হে কৃষ্ণ তুমি কোথায় ইত্যাদি বলে এই বনে বনেতে তারা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। তো এইটা তো নয়। আবার যারা নিত্য সিদ্ধ পরিকর ইত্যাদি আছে তারা বিরহ দুঃখ বিপ্রলম্ব হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখী। এই কৃষ্ণকে ডাকলে কৃষ্ণ এসে তাঁকে কৃপা করেন, কৃপা দৃষ্টি বিষ্টতি সাধন দ্বারা হবে না, লক্ষ সহস্র সাধনের দ্বারা এই ভাব ভক্তি সুদুর্লভা। ভাব ভক্তি সহজ হবে না, রাগানুগা অন্তর্গত যে ভাব ভক্তি লক্ষ কোটি সাধন করলেও সম্ভব না। দেখো উদ্ধব মতন লোক, তিনি এই নন্দগাঁওতে এসেছেন, গোপীগণের সঙ্গ হলো। কোন গোপীগণ? শ্রীমতী রাধিকা, তাহার কায় বিহা, আবার নিত্য সিদ্ধা, এই সকলের সঙ্গে দেখা হলো, তাদের কথাও শুনলেন। কিন্তু গোপী ভাব আসলো কি কি ব্রজের একটি তৃণগুল্মলতা হতে পারেন? তিনি প্রার্থনা করছেন, না সাম হো চরণ রেণী যু সাম হম শ্যাম, আমি এখানকার তৃণগুল্মলতা, আমি ইহাকে তৃণগুল্মলতা হো, ব্রজ কা ভাব নেই আয়া, আনা বড়া ভারী কঠিন হ্যাঁ, কেউকি উনকা নিত্য সিদ্ধ ইয়ে ভাব হ্যাঁ। লালসা জগি ঘাস বন করকে উহা পর আয়ে উদ্ধব কুণ্ড মে আয়ে। ইসলিয়ে সমস্ত দুঃখের মধ্যে সবসে বড় দুঃখ, সমস্ত দুঃখের মধ্যে সবসে বড়া দুঃখ হ্যাঁ উনকা বিরহ। বিরহ হোনে সেই আপনি আপ ও দয়া কর দেঙ্গে। কৃপা দৃষ্টি বৃষ্টাতি, কৃপা দৃষ্টি কি বৃষ্টি করুন। আমরা এই জন্য বর্ষানা নন্দগাঁও প্রভৃতি স্থানে এসেছি, আমাদের কোনো সাধন ভজন নাই, তো আমরা নিজেই দেখলে বুঝতে পারি। একটা নামকরণ করতে রোমাঞ্চ হর্ষ ইত্যাদি হয় না, শরীর পুলকিত হয় না। এইরকম যেরকম আমরা সাধন করছি কোটি জন্মতে বোধ হয় এই ব্রজের প্রেম আসবে কিনা সন্দেহ। একটি আশা, সর্বত্র তাহার করুণার বর্ষা হচ্ছে, বিশেষ করে ব্রজেতে করুণার বর্ষা কি ওই দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন গোপী ভাব ইত্যাদি চৈতন্য মহাপ্রভু। এই জন্য কৃপা দৃষ্টি বিষ্টতি দিনং বতানু, অহো আশ্চর্য এবং খেদেতে বলছেন, খেদেতে বিবৎস শব্দে প্রয়োগ। আর আমার কোনো সাধন ভজন নাই, সম্ভবপর নাই, সাধুও সঙ্গ নাই, এখন অনুগ্রহ করুন, কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করুন, যাতে একটি যদি ছিটা স্প্রিঙ্কল যদি লেগে যায়, একটি ছিটা লেগে যায়, এই ছিটাটা কি কৃষ্ণের? ওই ওই রকম সাধু ভক্ত যদি রসিক তত্ত্বজ্ঞ এই বৈষ্ণব যদি পাওয়া যায়, এদের কৃপাই হচ্ছে ওই একটি ছিটা মা কৃষ্ণের ডাইরেক্ট ছিটা আমাদের পাওয়ার যোগ্যতা নেই। শ্রীমতী রাধিকার কৃপা কটাক্ষ পাওয়ার জন্য আমাদের অত, ওই রকম বৈষ্ণবদের যদি এই মুখোচ্ছিষ্ট যদি এই কৃপার দৃষ্টি একটু হয়, বর্ষা হয় ওই করুণার, তাহলে আমাদের মঙ্গল। গৃহাণীশ গৃহাণ ঈশ মাম অজ্ঞ মেধক্ষি ঈশ্বর, এখন তিনি বলছেন যে পূর্বে তো তুমি প্রার্থনা করেছিলে যে মনে মনে আমারকে আবির্ভূত হওয়ার, বলছে প্রভু মনে মনে আবির্ভূত হয়ে গেছে, কি দেখলেন কি যশোদা মা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কৃষ্ণকে তিনি বেঁধে দিয়েছেন কমরেতে ও খল, আর চোখেতে কজ্জল মিশ্রিত, এই আর সাতঙ্ক দৃষ্টিতে এদিকে দেখে দেখছেন, ডরে হুয়ে নেত্রে সে দেখ হৃদয় মে আয়া। ঠিক কাজী প্রভু ইসে হমারা নহীন হো রহা, আমার চোখেতে যেন আপকো হম আপনি আঁখো সে হি দেখ সকে। কেউ পহলে কহ রহে হ্যাঁ শরীর সে দর্শন নহীন হোতা, আঁখ সে দর্শন নহীন হোতা, পিপলায়ন ঋষি কহ রহে यदि दर्शन होता है तो पहले मन में दर्शन होकर के तब इसमें होता है। मन में ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, कृष्ण से बातचीत भी किया और उन्होंने बर भी दिया, वो बर भी हो गया, पूरा हो गया, उनको शिष्य करने की सामर्थ्य भी आ गई। मन से भी हो सकता है। गोप कुमार ने कहा जी अपना प्रस्ताव प्रभु अपना रखिए, हम तो आपको बस आंख से ही दर्शन करेंगे। हम लोग के गुरु जी ने भी इसमें नोट फुट नोट में दिया है, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्श्व श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, बड़े कृपालु, आज उन्हीं की कृपा से हम लोग सब एकत्रित हैं। जब 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 तक वो प्रकट में थे ऐसे ही 500-600 व्यक्तियों को लेकर के, श्रद्धालु लेकर के, और पैदल उन्होंने दो बार परिक्रमा की, उसमें मैं सम्मिलित हुआ दो बार उसमें से। इसके बाद से तो फिर उनके प्रकट के बाद में हम लोग आते थे, 50 वर्षों में एक बार भी नहीं हम लोगों ने स्थगित किया। ये गुरु जी की ही कृपा है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वो नोट फुट नोट दे रहे हैं, आंखों से दर्शन नहीं होगा। आंख से जो दर्शन सहजिया लोग करना चाहते हैं ये उचित नहीं है, ये होगा ही नहीं। इसलिए पहले आत्मा में दर्शन होगा, कृष्ण अनुग्रह करके आत्मा में जब दर्शन देंगे और उस दर्शन से मन में प्रतिबिंबित होगा और वही प्रतिबिंब को गुरु वैष्णव लोग शक्ति द्वारा संचरित करके शिव विग्रह को स्थापन कर देते हैं, वही शिव विग्रह है। इसलिए वो नित्य सिद्ध स्वयं प्रकाश विग्रह है, इसलिए मन ही मन में ये भी नहीं होगा। इसलिए गुरु वैष्णव लोग कृपा करेंगे, भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में देंगे और उसको श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव इत्यादि के बाद में ये प्रेम प्रकट होने पर उनको साक्षात दे सकते हैं। भाव नेत्र होने पर भी स्फूर्ति होती है, भाव नेत्र यदि हो भावाविष्ट जखन लोग तखन तार की हवे स्फूर्ति, दर्शन होले स्फूर्ति मानवे। जे रकम होते सची मां महाप्रभु के देखे छे गोपीराज स्फूर्ति माने करतो साक्षात होले उ। आ जखन प्रेम जखन होवे एई जगत के छेड़े दिए आर ओई पर जगत ते जखन जाबे तखन ताके साक्षात रूपे तार संगे क्रीड़ा इत्यादि करवार तार लीला विलास मध्ये तार सेवा करवार अवकाश এই শরীর ভাবাবস্থা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, এরপরে নয়, ভাবাবস্থা পর্যন্ত, কারণ প্রেমকে এটা সহ্য করতে পারবে না, প্রেমকে ইয়ে সহ্য নেই কর সকতা ইয়ে শরীর। ইসলিয়ে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করকে প্রকট লীলা মে উসকো পহলে দেতে হ্যাঁ আর উহাঁ পর কুছ কষায় রহতা হ্যায় উসকো দূর করকে অন্ত মে নিত্য সিদ্ধ গৌলোক বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন মে উপস্থিত করতে হ্যায়। ইসলিয়ে ইয়ে নন্দনন্দন কে দরবার মে হম লোগ আয়ে হ্যায়, हम तो यही बस प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में जो हम लोगों की साधन भजन में रुचि हो और धीरे 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 हम लोगों को हृदय में रागानुगा भक्ति हो, तत्पश्चात रसिक वैष्णवों का संग हो और अंत में हम लोग यश नंदगांव में उद्धव क्यारी में यहाँ का जो वर्णन किया है भ्रमर गीत अथवा उद्धव संदेश इत्यादि को हम लोग समझ सके और फिर उसमें हम लोग प्रवेश करके उनकी सेवा कर सके। आज यहीं तक हम लोग यहाँ पर करते हैं, अभी हम लोग जय दे करके और तुरंत, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज जल खाने के लिए भी कोई जरूरत नहीं, आदेश लेंगे और पावन सरोवर को परिक्रमा करके प्रणाम करके और फिर वहां से हम लोग जाएंगे जोगिया स्थल, जोगी जहां शंकर जी जोगी बन करके कृष्ण का दर्शन करने के लिए आशीषेश्वर महादेव के साथ में जाएंगे, जिन्होंने आशीष दे करके वर दे करके परजन्य बाबा को वर दिया जो तुम्हारे बेटे पिछले बेटे को जिसको संतान है उसको एक बहुत ही विश्वविख्यात एक लड़का पैदा होगा, तुम्हारा कुल उसी से तर जाएगा। और इसके बाद में हम लोग जाएंगे नंदबाग, नंदगांव का बगीचा और खीड़क, खीड़क माने क्या, यहाँ पर कोटी कोटी गायें वहां पर रहती थी। कृष्ण यहां से दोहन करने के लिए जाते और वहीं पर है पासी में कदम बटे, जहां पर की गायों को और गोपियों को वहीं पर पुकारते थे और वो सब गोचारण करते थे दिन में और अन्य समय में गोपियों के साथ में राशि इत्यादि करते थे। वो कदम बटे पासी में रूप गोस्वामी की भजन स्थली है, इसका हम लोग दर्शन करेंगे, उनसे कृपा प्रार्थना करेंगे। गौर प्रेमानंदे और गोपियों के साथ में नंद बाबा के साथ में क्या उनका वार्तालाप हुआ, यहाँ का भाव का हम लोग ठीक 4:30 बजे 4 बजे आप लोग कीर्तन में बैठ जाएंगे, बाहर नहीं होगा, बाहर में वहां पर छाया है और कीर्तन के बाद में हम लोग कुछ कुछ वर्णन करेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे। तो ये बाबा तुम पानी क्यों नहीं पीता, पानी तो पीना चाहिए। तो बेटी मैं नंदगांव में कैसे पानी पीऊं, तो क्या बात हो गई, अरे राधा तो मेरी बेटी है, मैंने उस गांव में नंदगांव में अब ब्याही है
कन्यादान कर दिया,
जहां पर हम लोगों ने कन्यादान किया हुआ वहां का पानी या कोई चीज हम कैसे ग्रहण करें, दान की हुई चीज को नहीं लेना चाहिए। राधा जी बोली, वो राधा जी थी, बोले जब बाबा हम तुम बरसाने में आ गया है, ये कुआं बरसाने में पड़ता है जहां हम खड़ी है, तो पानी पियो, अपने हाथ से पानी लेकर के और उसको पिलाया। देखो राधा जी भी करुणा की, और उस व्यक्ति का भी साधार अभी अधिक दिन नहीं हुआ, करीब 50-60 या 100 वर्ष की बात ये कह रहा हूं, हमने यहाँ के लोगों से सुना है, तो यहाँ के लोगों की भावना ही ऐसी है। होली के समय पर यहाँ के लोग जाते हैं और वहां से फिर वहां पर कीर्तन होता है, फिर यहाँ पर क्या वो समाज होता है, सामने मत रखो, सामने रखने से फिर गड़बड़ हो जाता है साइड में। हम लोग एक बार गए गोपाष्टमी के दिन में, मैं यहाँ आता हूँ परिक्रमा लेकर, प्रति बार गोपाष्टमी के दिन जरूर आता हूँ, इस बार कुछ नया कुछ सुझा जिसमें हम लोग दिवाली और अन्नकूट करेंगे गिरिराज गोवर्धन में, आज 50 वर्ष में हम लोग ये नहीं किए, तो इस बार वहां पर ये करेंगे और अगले वर्ष फिर गोपाष्टमी में हम लोग यहाँ नंदगांव में, बड़े बूढ़े और सब बच्चे सभी लोग, जैसे कृष्ण का गोपाष्टमी होता था ठीक वैसे ही कर अपने घरों घरों में कृष्ण और बलदेव को लेकर के उनका मुख मीठा करती हैं, उनको खवाती हैं, घर घर में मालपू और क्या क्या चीजें बनती हैं और सब बूढ़े लोग गायों को लेकर के और कीर्तन करते हुए कृष्ण को और बलदेव को कंधे पर लेकर के गोचारण करने के लिए जाए। वहां पर हमने सुना, मैं जब पहले आया था, ये जो नंद बने हुए हैं ये नंद बने हुए नहीं है, उनका बचपन से ही ऐसा भाव है कि मैं नंद हूं, मैं नंद बाबा का सखा हूं और कृष्ण मेरे बेटे, इसलिए जब भी वो कृष्ण को देखते हैं सभी ऐसा ही भाव उनका रहता है कि मैं नंद बाबा, इसलिए सभी लोग उनको नंद ही बाबा कहते हैं। यहाँ की महिलाएं हैं वो अपने को जसोदा जी की सहेली समझती है, कृष्ण के प्रति वैसे ही। यही हमारे सामने में जो ब्रजवासी जो बैठे हुए हैं, श्याम क्या श्याम मुखिया, इनको साधारण मत समझेंगे, मैं तो इनको अपना सखा ही मानता हूं और इनके भावों को ग्रहण करता हूं, यद्यपि इनके भावों में हमारे भावों में कुछ कुछ है पैसिस, ये सब समय बात्सल्य भाव में रहते हैं और मैं रहता हूं दूसरे भाव में, तो अभी देखते हैं कि हाँ ससुर के प्रति जो कर्तव्य है उसी रूप में हम लोग इनको देखते हैं। तो पहले हम लोग इनसे एक कोई भाव इनकी अनुभूति यहाँ की हम लोग सुनेंगे, कहीं लिखा है हम लोगों के कीर्तनों में भी, हम जाएंगे गौर
गौड़ वन में या वृंदावन में, और वहां पर हम सुधाएंगे, सुधाइब की ब्रजवासी जन। एखने कृष्ण की क्या लीला यहाँ हुई, यहाँ पर कृष्ण ने कौन सी लीला की?
नौतन ठाकुर पद में जाई द्वादश बने सुधाई जन जने ब्रजवासी चरण धरिया।
ब्रजवासी के चरणों में पकड़ करके ये पूछेंगे यहाँ पर कृष्ण ने कौन सी लीला की, यहाँ पर कौन सी लीला। वो कहेंगे जाओ हमारे साथ में, हमको साथ में लेकर के कहेंगे यही उद्धव क्यारी है। यहाँ पर कृष्ण मधुर मधुर बन करके आए थे, यहाँ पर गोपियों का संवाद जो था उद्धव जी ने श्रवण किया और कृष्ण को बतलाया था जाकर, उनकी चरण रेणु बनने की अभिलाषा उनकी। यहाँ पर कदम्ब ठेर है कृष्ण सखाओं के साथ में गोचारण करते हुए आते, और कदम्ब के ऊपर में बैठ करके बंसी से धौली श्यामली कलिंदी इत्यादि गायों का नाम पुकारते, ये ब्रजवासी लोग बतलाए। आज हम ब्रजवासी के मुख से दो चार बातें हम लोग कुछ सुनेंगे, उसमें यदि पद का भी होगा हिंदी में गान करेंगे, हम हिंदी में तो उसका बंगला में हम ट्रांसलेशन करेंगे, आप इनसे सुनिए। दे दो माइक।
आप जसुधा को प्यारो और दुष्टन को काल बल देव जी को भाई है, हमारे कृष्ण को भाग और स्वरूप कैसो है कि नंद को दुलारो मात जसुधा को प्यारो और दुष्टन को काल बलदेव जी को भाई है। यहाँ कृष्ण और बलदेव की सरकार है, राधा कृष्ण की सरकार नहीं है। यहाँ किशोरी जी मैया की बगल में, सास की बगल में बहू बन के विराजमान है। जहाँ नंदगाम को छोड़ करके आप जहाँ कहीं भी दर्शन करेंगे, केवल एक नंदगाम को छोड़ के ब्रज में करें या विश्व में करें, जुगल सरकार को दर्शन मिलेगा। और यहाँ किशोरी जी मैया की बगल में बहू बन के विराजमान, ये नंद को दुलारो मात जसुधा को प्यारो, दुष्टन को काल बल देवजू को भाई है। शीश पे मुकुट वारो, हाथ में लकुट वारो, लठिया बिना कहूँ ना रहे, हाथ में लकुट वारो और गैयन चरान वारो शाम रो कन्हाइये। राधिका को प्यारो, प्रभु सखान को सहारो, ऐसो नंद गाम वारो वृषभान को जमाई। जो बाबा को भाव उत्पन्न भयो कि हमारी जो परम्परियता जो है, पुरानी पसंदी जो चली आ रही है 5000 साल की, वो आज भी बरकरार है, जीवित है। मतलब हम लोग उनके हाव भाव और प्यार प्री, यानी नंदगाम का कोई जो मेला उत्सव ठाकुर जी का जो बनता है, वो किशोरी जी यानी बरसाने वालों के सहयोग से ही बनता है, और बरसाने का कोई उत्सव मेला होता है तो नंदगाम के सहयोग से बनता है। तो हमारी जो दोनों की परस्परता की जो संस्कृति है आज बरकरार है, जो साक्षात्कार है, जैसे होली है, जन्माष्टमी है, हमारी बधाई होती है लाला की जन्मोत्सव की, तो बरसाने वाले आएंगे तभी बधाई होगी, किशोरी जी की बधाई होगी तो बरसा नंदगाम वाले जाएंगे तभी बधाई होगी। तो ये कीरत किशोरी गोरी, यानी राधिका जी की माता को नाम हो कीरत, ये कीरत किशोरी गोरी राधिका है नाम या को, खेल के बहाने नंदगाम माहे आई है, नंद के भवन आए श्याम सो मिली है धाए, और श्याम गोरी जोरी देख जसधा मन भाई है। जब जसधा मैया ने जो है जोड़ी इनको देखे हो, ये छोरी कौन की आएगी आज हमारे नंद भवन में, सबरा उजारो उजारो है रहे हो, कौन की आ गई है, तो झट मन में जो है लालच आ गए हो कि गोद भर दीनी, बिना ही पूछे ताजे बात करे बेगरी जो है किशोरी जी की गोद भर रही है जसुधा मैया। गोद भर दीनी कीनी बिनती बिरंचयों सो, अब विधाता ते प्रार्थना कर रही है कि कहूँ राधिका ते, ये वृषभान की लली है और या को नाम राधिका मैं जानूँ, कहूँ याते होए मेरे श्याम की सगाई है, फिर ना रह गए हो जसुदा जी पे तो बरसाने चली गई हैं बिना ही बुलाए, कहीं बरसाने जाई और बात सब हिनकु भाई, तादन ते श्याम वृषभान को जमाई। अर कन्हैया तेरो कारोरी, अब बरसाने की गोपी कह रही है, बोली मैया सगाई तो मभाल कर दे पर कैसे करें, तेरे लाला तो कारो बहुत है। कन्हैया तेरो कारोरी में कैसे ब्याहूं राधे, अर कन्हैया तेरो कारोरी में कैसे ब्याहूं, कैसे ब्याहूं राधे में कैसे ब्याहूं राधे, कन्हैया तेरो राधे कैसे ब्याहूं राधे, कन्हैया तेरो कारोरी में कैसे ब्याहूं, तेरो कन्हैया इतनो कारो तेरो कन्हैया, अर बादर में घोर धार
चादर में घोरे नारोरी में कैसे ब्याहूं।
और मेरी राधा,
मेरी राधा इतनी गोरी,
मेरी राधा इतनी गोरी,
बादर में चंद्र उजारोरी में कैसे ब्याहूं राधे। अर बादर में चंद्र उजारो कैसे ब्याहूं।
अब गोपी कह रही है नंदगाम की, कारो कारो मत कह ग्वालिन,
कारो कारो मत कह,
कारो ही जगत उजारोरी में कैसे ब्याहूं रा, हर कार कारो ही जगत उजारोरी में कैसे ब्याहूं राधे। हर का नैया तेरो कारो में कैसे ब्याहूं, वृंदावन की कुंज गलिन में,
वृंदावन की
गलिन में, वृंदावन की कुंज,
वृंदावन की कुंज गलिन
में, घर घर को उजियारोरी में कैसे ब्याहूं राधे। अरे घर घर को उजियारोरी में कैसे ब्याहूं कन्हैया लाल।
ब्रज विसरत नाई, जा समय भगवान ऐश्वर्य भोगवे के लिए, रहीसी भोगवे के लिए, या ब्रज में तो बन बन गऊ चराई, ग्वाल बालन के संग में छन्ना की रोटी खाई, जैसे कपड़ा में बांध के ग्वालिया ले जाएं, और वृक्ष से बांध दियो, और मध्यान्ह जन दोपहर को जब वो इकट्ठे हुए ग्वालिया, तो अपनी अपनी रोटी ने खोल के जो है और खावे, तीर मैया ने का धरे हो भैया, तीर मैया ने का धरे हो, ऐसे गोल मोल बनाए के गोल मंडला सब ग्वाल बाल खा रहे हैं। तो यहाँ तो ब्रज में तो ये सीन रहे हो, पानी बोले पोखरान में जो पानी भर रहो खड्डेन में, वो आंजनो मतलब ऐसो आंजनो भर के यूँ पी रहे। ये जो है ब्रज की प्रक्रिया यहाँ रही। जब उन्हें ऐश्वर भोगियो तो वो द्वारका को चले गए, और वहाँ जा करके ये जो भाव को जो लीला को जो उत्पन्नता जो वो करी है, तो वहाँ उद्धव जी से प्रतिदिन जो है यही क्यों करे, बोले उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाई। बोले महाराज खाए तुम्हारी बा ब्रज में, बोलंत हेलार बचनंत गारी, करील वृक्ष कूप जल खारी, वो देखी नाए मधपुरी तिहारी, जाकि तुम उठते ही प्रतिदिन, बाबा सब सुन रहे हैं, यहाँ प्रतिदिन उठते ही तुम याकि प्रशंसा करो, वहां तुम बन बन गऊ चरावे, पोखरा को पानी पीवे आंजने ते, छन्ना की रोटी खावे, कमर की खोई लगावे, और यहाँ कैसे कैसे मजा आ रहे हैं महाराज, कैसी जय जयकार है रही है, 16 सहस्त्र रानी आपके आंगन में विराजमान है, कल्प वृक्ष लग रहे हुए, 56 प्रकार के पदार्थ जो है भोजन में आ रहे हैं, और फिर जो है यही कहो कि मोए ब्रज बिसरत नाय। उद्धव को ये बात जो है फील्ड हुई, गलत लगी कि ब्रज की बहुत प्रशंसा करें, तो उनने कही कि उद्धव को जब तक मैं ब्रज में नाय भेजूंगो तब तक ये कु जो है अपने मन में यही घमंड रखेगो कि भगवान से प्रेम करे वारो, यानी मोते स्नो स्नेह करे वारो कोई ना है, यानी याकु काउत रहते कह करके ब्रज में भेजू मैं। तो मान की महाराज में ब्रज को तो चले जाऊंगो, पर वहां की जो रोज प्रशंसा करो इतने दिन से कर रहे हो आप, तो वो कछु तो सूक्ष्म में आप बताओ कि वहां कहा विशेषता है। तो भगवान कह रहे हैं, बोले उद्धव सुन मेरी बात कि हंस सुता की सुंदर कलरव, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव से समझा रहे हैं कि ब्रज की महिमा मेरी सुन तू, जो वो याद आवे और सता रही है, हंस सुता की सुंदर कलरव और तरुवन की छाई, और वे सुरवि वे बच्च दोहनी खिरक दोहामन जाई, वे सुरवि वे बच्च दोहनी। मेरे बाबा जो है जब दूध काढ़वे जाओ खिरक में, तो मैं नीचे ते जो है धोनी में छेद कर ले हो, तो बाबा ऊपर ते दूध काटते रहे हो धोनी में, और मैं नीचे छेद करके वहां ते पीमते रहे हो, वो सुखमो को यहाँ कहा है। वे सुरभी वे बच्चे धोनी खिरक दुहामन जाई, और ग्वाल वाल सब करत कोलाहल कर कर गह गह बाई। हम या गोपी की ये बात धार ले, आज या गोपी के घर में चोरी करनी है, तो हम एक पे घोड़ा बन के दूसरा और दूसरे पे तीसरा, और ऐसे करके हम बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे सीके ने हम उतार ले और खावे, वो सुख मुख यहाँ कहाँ। वे सुरवी वे बच्चे धोनी खिरक दोहामन जाई, ग्वाल वाल सब करत कोलाहल कर कर गह गए बाई, और वो ब्रज मंडल कंचन की नगरी मणि मुक्ता जय माई अनगित भात करी बो लीला जसमत नंद ने भाई सवेर सवेरे गोपीन के ढेर है जाए मेरे आंगन में मैया के घर में बहुत गोपी आमी मैया आज हमारे फलाने काम में कराए हो आज हमारे मटकाए फूल आए हो आज हमारे छींको उतार के सबरे माखन खाया हो रोज रहानो आवे हो और मेरी मैया कहा कहती कि बहना गारी मद्दी जो वो गरीब नहीं को जाए हो यानी मैंने चौथे पन में जन कैसे उधारो सुधारो या कुछ पाए हो यानी जसोदा मैया कह रही है गोपीन ते बहना ऐसा गारी मत दे दीजो कोई जो मेरे कुछ पता नहीं जाए गारी मत दीजो वो गरीब नहीं को जाए हो जाको जितनो खायो मेरे घर से दूनो ले जाइयो पर कोई ऐसी गाड़ी मत दीजो बहना आत्मा थे समझे तो वो सुखमोकू कहा है ग्वाल वाल सब करत कोलाहल कर कर गह गए भाई और वो कंच वो ब्रजमंडल कंचन की नगरी मणि मुक्ता जय माई अनगित भात करी बहु लीला जसमत नंद निभाई और सूरदास प्रभु रहे मौन यो कह कह के पछताए भगवान कह रहे हैं बोले भैया उधो तू ब्रज की कहा पूछे मोए तू जाएगो तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगो मोपे तो इन गोपीन को त्रेता को रहने यहाँ जा समय राम अवतार में राजा जनक ने 6 महीना बरात को रखियो तो वहां की ब्रजांगनान की ब्रज गोपीन की इच्छा पूर्ण ना है भाई वो यही कहती रह गई तो मैंने उनको ये वचन दियो कि द्वापर में मैं जन्म लूंगा तुम्हारी सबकी इच्छा पूर्ण करो यानी मोह तो वह ऋण चुकावे के लिए यहाँ आना पड़ो अथवा मैं ब्रज मन तो मेरे वहीं धरे हो मोकू तो एक क्षण भी जो है ब्रज ना बिछड़ना चाहिए तब उद्धव जी यहाँ आए और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यहीं भेजो ब्रज मंडल में थे और कौन आए भेजो तो कहने को भाव ये है कि नंदगाम को जो भाव है वो सबसे अलग ही है यहाँ गोपी ग्वाल यहाँ को वातावरण रहनी सहनी जलवायु स्थान सबसे अद्भुत है अब या प्रेम से कोई जुड़ेगा या भूमि से कोई जुड़ेगा तब वहाँ को स्वाद आवेगा बाकी ऐसे थोड़ी कोई आ जाएगा
तुम्हारी ससुर का घर कहाँ है तुम कहाँ की रहने वाली है संक्षेप में इस कीर्तन को जरा करो
छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी छोटी मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे मैंने बात पूछी हाँ मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे मैंने बात हसस के बतावे वो तो हसस के बतावे वो तो बरसानो मेरो गाँव रे हसस के बतावे वो तो बरसानो मेरो गा हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी छोटी सी हो पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोलेरी पाँव में हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी छोटी मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे ससुराल रे मैंने बात हाँ मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे ससुराल रे मैंने बात शर्मा के बोले मोसे, शर्मा के बोले मोसे नंदगाम ससुराल रे, शर्मा के बोले मोसे नंदगाम ससुराल। हो पाँव में पायलिया बाके चमचमा चम बोले री, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले री, छोटी मैंने बात पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने बात राधे मैंने बात पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने बात हाँ मुस्कुरा के बोले मोसे, मुस्कुरा के बोले मोसे श्याम मेरे भरतार रे, मुस्कुरा के बोले मोसे श्याम मेरे भरतार। हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले री, छोटी ओ पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले री, पाँव में छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले री, छोटी हाँ मैंने बात पूछी लाली खाओगी क्या माखन, मैंने बात हाँ मैंने बात पूछी लाली खाओगी क्या माखन, मैंने बात आहा बोले मोसे, आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे, आहा बोले मेरे आगे पीछे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी की चंद्र सखी भज बाल कृष्णा चबि, चंद्र सखी चंद्र सखी भज बाल कृष्णा चबि, चंद्र सखी सपन में आके मोसे, सपन में आके मोसे मीठी मीठी बोले रे, सपनों में मीठी मीठी ओ पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले री, पाँव में छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले री, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले री, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीनापराधलक्षै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो
मन्दीकृतेन्दीवरम् जड्डञ्जागुडरोचि संविदधतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामोदरं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके पूज्यपाद दामोदर महाराज जी ने आप लोगों को बंगला भाषा में कृष्ण का तत्व और कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र हैं और आंशिक रूप में वसुदेव के पुत्र हैं, आंशिक रूप में मथुरा में जन्म, अपूर्ण रूप से स्वयं कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, ये सब बतलाए। बहुत सी सुंदर सुंदर और सिद्धांत की बातें इन्होंने कही। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत अब रात हो जाएगी, आप लोगों को सवेरे 3 बजे उठना है, इसलिए संक्षेप में दो एक बातें हिंदी में ही बतलाता हूँ। रामचंद्र जी ही विल ट्रांसलेट आफ्टरवर्ड इन इंग्लिश। ये स्थान नंदगांव है, मैंने पहले बतलाया है कि नंद बाबा अपने पिता इत्यादि भाइयों के साथ में नंदगांव रहते थे। उस समय कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ पर केशी दैत्य इत्यादि का अत्याचार बढ़ने पर इन्होंने सबसे परामर्श करके स्थान को छोड़ करके महाबन गोकुल में चले गए। वहाँ पर कृष्ण का आविर्भाव हुआ। उधर मैरावल में श्रीमती राधिका का जन्म हुआ। कृष्ण करीब 2.5 या 3 वर्ष तक की उम्र तक में गोकुल में रहे, 3 वर्ष 4 महीना तक रहे, और दामोदर लीला उनकी वहाँ की अंतिम लीला है। इसके पहले वो पूतना शकटासुर, तृणावर्त और न जाने कितने कितने उत्पात हुए। इसलिए वहाँ पर भी उन लोगों की बैठक में ये तय किया गया गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में हमको वास करना चाहिए। इसलिए वहाँ से वृंदावन में आ गए। वृंदावन में उन्होंने बछड़ों को चराना आरम्भ किया और पौगंड लीलाएँ वहाँ पर हुई। वहीं से गो सर्वत्र गो, गो ये गो बस इत्यादि चारण करते थे। भांडीर बस मन में वहाँ से ही जाया करते। इसके बाद फिर वहाँ से दीर्घपुर, दीर्घपुर माने डीग, डीग में आए। वहीं पपासी के ग्राम में राधा जी के पिताजी रहते थे। फिर वहाँ पर भी वहाँ से हुआ आगे चले तो काम्य वन में आए। काम्य वन में नंद बाबा की ससुराल और कृष्ण का मामा का घर है, वहाँ पर कुछ दिन रहे, वहाँ पर लीलाएँ की। और वृषभानु महाराज भी विशाल काम्य वन में एक भाग में वो रहते थे, कोई पूर्व वहाँ पर वृषभानुपुर या क्या नाम है उस जगह में रहते थे। इसके बाद में वहाँ से फिर जब उनका एक डेरा निकला तब फिर ये नंदगांव में पहुँच गए। इस तरह से यहाँ पर आए। यहाँ के लीला का ये वैशिष्ट है कि कंस जबकि कृष्ण और बलदेव को नहीं मार सका तो मृत्यु मानो उसके निकट आ रही है, उन्होंने अक्रूर को यहीं पर भेजा, जाओ कृष्ण बलदेव को ले आओ। अक्रूर जी यहाँ पर आए। हम समझते हैं कि शुभानंद ब्रह्मचारी जी कल बतलाया होगा इसके संबंध में, और उद्धव जी का नंद बाबा का मिलन भी बतलाया था, नहीं हो पाया तो इसके लिए तो काफ़ी समय चाहिए। मैं संक्षेप में कुछ बतला देता हूँ, फिर समय मिलने पर इसके संबंध में विशेष बतलाऊंगा। तो अक्रूर जी यहाँ आए, अक्रूर जी से कृष्ण और बलदेव मिले, रात में बड़ी प्ररोचना दी, अरे तुम्हारे माँ बाप को कंस मारा है, जल्दी से चलो, उन्हें तो मर जाने के बाद में क्या होगा। ऐसी प्ररोचना दी, उन्होंने कहा अरे हमारे माता पिता तो वसुदेव नंद और यशोदा है, ये आप तो नई बात बताते, नई नई बात नहीं, मैं रहस्य की बात कह रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कंस के डर से तुमको यहाँ दे दिया। उन्होंने सोचा जे कोई बात नहीं, हमारे पिताजी के ये भैया हैं वसुदेव जी, हमारे पिताजी भी कहते हैं, माने नंद बाबा कहते हैं, इसलिए उनको दुख से छुटकारा देना चाहिए। इसलिए अक्रूर के साथ में दूसरे दिन कृष्ण और बलदेव मथुरा में आए और वहाँ पर कंस को मारा। मारने के बाद में वसुदेव जी ने सोचा इसको यहाँ नहीं रखना है तो ब्रजवासी लोग आएंगे, नंद बाबा आएंगे और फिर उसको लेकर के चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा जी इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत दूर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। ये अभी तक समझता है कि मैं ग्वाला हूँ, बलदेव भी समझता है कि ग्वाला हूँ, इसलिए इसमें एक ऐसा संस्कार डाल दिया जाए जो ग्वालेपन को भूल करके अब अपने को क्षत्रिय अभिमान करे और मेरा बेटा मन समझे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका वहाँ पर उपनयन किया। उपनयन के संबंध में मैंने बहुत सी लीलाओं को बतलाया है, इसको कहने से तो फिर ये रह जाएगा, इसलिए इसको छोड़ करके आगे चाहते हैं कैसे उपनयन हुआ। और उन्होंने ब्रजवासी किसी नंद बाबा यशोदा इत्यादि किसी को खबर नहीं दी, गुप के चुपके से कृष्ण का उपनयन किया। अंत में यही कहूँगा कि वो जबकि कृष्ण का ब्रह्मचारी वेश हुआ और खड़ाऊँ और इधर हाथ में दंड दे करके भिक्षा के लिए भेजा, जाओ मैया से पहले भिक्षा ले आओ, तो कृष्ण जी देख रहे हैं मैया कहाँ, मेरी मैया कहाँ। सामने में वो सोने की थाल में मोहरे और असरफियाँ भरी हुई हैं लेकर के रखी हैं, देवकी जी हमारा बेटा आएगा तो इसको था इसकी झोली भर देंगे, किंतु कृष्ण देख रहे हैं मैया कहाँ, मैया कहाँ, मैया यशोदा मैया कहाँ मेरी। बस उन्होंने यही कहा मैया मैया, मैया ने कहा था जे तुम्हारी झोली को मैं भर दूंगी और तुम अपने गुरु जी को दे देना, आज यशोदा मैया हमको उपनयन के समय में नहीं है। बस वहीं पर मूर्छित हो गए, सब लोग विकल हो गए, कृष्ण फिर रोते 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 और बलदेव दोनों भाई मूर्छित हो गए। वसुदेव जी ने देखा ये तो बड़ी गड़बड़ी की बात है, जल्दी से इसका संस्कार कराना चाहिए, क्षत्रिय के रूप में इसको जनेऊ देना चाहिए, गोपों को जनेऊ नहीं होता, बहुत से लोगों का होता है और बहुत से लोगों का नहीं होता है, तो इन लोगों का जन्म नहीं होता, तो इसलिए इसको वहां पर भेजें मध्य भारत में, और मैं उज्जैन में भेजूं। वहीं पर सांदीपनी मुनि हैं, वो पहले काशी में रहते थे, अब परिवार के साथ में वहां पर रह रहे हैं। कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि मैं वहीं पर पढ़ूं, किस लिए, इसलिए कि दजी कोई मैं भक्त के पास में जाऊंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मैं नंदनंदन हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, ये लोग समझ लेंगे, इसलिए ये अद्वैतवादी हों और शैव हो उनके यहाँ पढ़ूं, इसलिए वहां पर गए, इन्होंने भेज दिया। क्षत्रिय के रूप में इनका जन उपनयन भी हो गया, वहां पर पढ़ा। उपनयन होने के बाद में वेद आरंभ होता है, शास्त्र उपनयन उपनिषद इत्यादि आरंभ होता है, वहां पर पढ़े। वहां पर कितने थोड़े दिनों में ही 60 कलाएं की 64 कलाएं उन्होंने सीखी,